नमस्कार भारत, 19 अक्टूबर शनिवार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। अलगाववादी नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ कैटलोनिया में हिंसक प्रदर्शन। अंतर्राष्ट्रीय संस्था FATF ने पाकिस्तान को दी ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी।
इंडिया का काफी प्रेशर था और वो चाह रहे थे कि जो कश्मीर में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं, उसको बंद किया जाए।
विवेचना में आज कहानी रोमानिया के तानाशाह चाचेस्कू की।
जब मैं गया रोमानिया में तो मेरे को ये लगा कि लोग जो है अपनी छाया से भी घबराते थे।
और जानेंगे रांची में भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें क्यों ठहरी हैं अलग अलग होटलों में। लेकिन सबसे पहले सुनेंगे विश्व समाचार।
BBC समाचार गुरप्रीत सैनी से। स्पेन के बार्सिलोना शहर में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। प्रदर्शनकारी कैटलोनिया के 9 अलगाववादी नेताओं की रिहाई की मांग कर रहे हैं। इन नेताओं को इस हफ्ते की शुरुआत में जेल भेज दिया गया था। प्रदर्शन में शामिल युवाओं ने बैरिकेड्स में आग लगा दी, जिन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया। स्पेन के गृह मंत्री का कहना है कि हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को 6 साल तक की जेल हो सकती है। न्यूयॉर्क की एक अदालत ने होंडुरस के राष्ट्रपति के भाई को ड्रग्स की तस्करी का दोषी पाया है। टोनी हर्नांडेस को पिछले साल मियामी में गिरफ्तार किया गया था। हर्नांडेस पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिका में 200 टन की कोकीन की तस्करी करने के लिए होंडुरस सरकार से अपने संबंधों का इस्तेमाल किया था। वहीं होंडुरस के राष्ट्रपति ख्वान ओर्लांडो हर्नांडेस ने इन आरोपों को खारिज किया है। राष्ट्रपति हर्नांडेस ने उन आरोपों का भी खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि उन्होंने खुद भी जेल में बंद मेक्सिको के एक बड़े डीलर से कम $10 लाख की रिश्वत ली थी। अमेरिका की सरकार हमारे देश को ड्रग्स का गढ़ कह रही है, ऐसे आरोपों को हम खारिज करते हैं। सच्चाई से बिल्कुल उलट है। हमने क्षेत्र में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। इस लड़ाई के नतीजे का अमेरिका की उन्हीं संस्थाओं में उल्लेख किया गया है। ये थे होंडुरस के राष्ट्रपति के शब्द। मामला सामने आने के बाद होंडुरस में सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रही हैं और लोग राष्ट्रपति हर्नांडेस से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सांसदों से अपील की है कि वो नए ब्रेग्जिट समझौते के पक्ष में मतदान करें। समझौते पर आज संसद में वोटिंग होनी है। बोरिस जॉनसन ने कहा कि इससे अच्छा ब्रेग्जिट समझौता नहीं हो सकता है, लेकिन DUP में सरकार के पूर्व सहयोगी और हर विपक्षी पार्टी समझौते के विरोध में वोट करने की योजना बना रही है। प्रधानमंत्री जॉनसन ने जोर देकर कहा कि अगर वो समर्थन नहीं करते तो भी महीने के अंत में ब्रेग्जिट होकर रहेगा। फिर आप मुझे कहने दीजिए कि हम 31 अक्टूबर को यूरोपीय संघ से अलग हो रहे हैं। सब चाहते हैं कि ब्रेग्जिट हो जाए, सिर्फ ये देश नहीं पूरी दुनिया चाहती है, खासकर EU के दोस्त और सहयोगी। 3.5 साल हो चले हैं, अब हमें आगे बढ़ना होगा और एक नई पार्टनरशिप बनानी होगी, एक नया मुक्त व्यापार समझौता करना होगा। ये थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर ने एक बड़े ड्रग्स डीलर के बेटे को रिहा करने के अपने फैसले का बचाव किया है। राष्ट्रपति ओब्राडोर का कहना है कि उनके इस फैसले से कई जानें बच गई हैं। ओविडियो लोपेज की गिरफ्तारी के बाद से पुलिस और हथियारबंद गैंग के सदस्यों के बीच हिंसक झड़पें हुई थी। राष्ट्रपति ओब्राडोर का कहना है कि उन्होंने सैन्य कमांडरों से सलाह मशविरा करने के बाद ही लोपेज को रिहा करने का फैसला किया है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य मिच मैककोलन ने सीरिया से सेना को वापस बुलाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले की आलोचना की है। मैककोलन ट्रंप के समर्थकों में से एक रहे हैं, लेकिन सीरिया से सेना वापस बुलाने के ट्रंप के फैसले को उन्होंने गंभीर गलती बताया है। वॉशिंगटन पोस्ट में उन्होंने लिखा कि इससे अमरीका के दुश्मनों के हौसले बढ़ेंगे और अमरीका के लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। BBC समाचार।
न नमस्कार स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का। ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन रहे हैं। स्पेन के बार्सिलोना शहर में देर रात तक बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शन हुए। दरअसल कैटलोनिया के 9 अलगाववादी नेताओं को जेल भेजने को लेकर लोगों में गुस्सा है। प्रदर्शनों के दौरान पुलिस और लोगों के बीच हुई झड़प में 90 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। स्पेन के गृह मंत्री ने चेतावनी दी है कि हिंसा के जिम्मेदार लोगों को 6 साल तक की जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए गुरप्रीत सैनी से।
राजनीतिक कैदियों के लिए आज़ादी, आज़ादी, आज़ादी। स्पेन के बार्सिलोना शहर में शुक्रवार को लाखों लोग ये नारे लगा रहे थे। ये लोग कैटलोनिया के उन 9 अलगाववादी नेताओं की रिहाई की मांग कर रहे थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जेल में डाल दिया गया। बार्सिलोना में 2 प्रदर्शन हुए, एक में 5 लाख लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से हिस्सा लिया। एक महिला ने कहा, हम बिना लड़े शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने आए हैं क्योंकि इस तरह अलगाववादी नेताओं को जेल में डाल देना गलत है। लेकिन बार्सिलोना में हुआ दूसरा प्रदर्शन हिंसक हो गया। इसमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा हुई। प्रदर्शन में शामिल युवाओं ने बैरिकेड्स को आग लगा दी और पुलिस पर पत्थर और अंडे फेंके। इन्हें रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि हिंसा करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। हिंसा करने वालों की पहचान की जाएगी और उन्हें अदालत के सामने पेश किया जाएगा। हाल के दिनों में कैटलोनिया के कई शहरों में हिंसा हुई है। इन गंभीर मामलों में जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। ये थे स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज। कैटलोनिया क्षेत्र के नेता किम टोरा ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों का शुक्रिया अदा किया और हिंसा करने वालों की निंदा की है। उन्होंने कहा कि अलगाववादी नेताओं को दी गई सजा से स्वतंत्रता आंदोलन कमजोर नहीं पड़ेगा। जेल में डाले गए अलगाववादी नेताओं पर देशद्रोह का आरोप है। दरअसल साल 2017 में एक जनमत संग्रह कराया गया था और उसके बाद कैटलोनिया को स्वायत्त घोषित कर दिया गया था। हालांकि बाद में स्पेन की एक अदालत ने जनमत संग्रह को गैर कानूनी करार दे दिया था। इस मामले में भूमिका को लेकर ही इन अलगाववादी नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अभियुक्तों ने आरोपों से इनकार किया है।
कैटलोनिया में प्रदर्शन रिपोर्ट सुना रही थी गुरप्रीत सैनी। स्पेन के बाद रुख करते हैं पाकिस्तान का। वैश्विक स्तर पर चरमपंथ की निगरानी करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था FATF ने पाकिस्तान को अगले साल फरवरी तक का मौका देते हुए कहा है कि वो अगर चरमपंथियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करता है तो उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि चीन की वजह से पाकिस्तान को ये मोहलत मिली है, लेकिन अब पाकिस्तान के सामने ब्लैकलिस्ट होने से बचने की कितनी बड़ी चुनौती है, इन्हीं मसलों पर हमारे सहयोगी संदीप राय ने इस्लामाबाद में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार हारून रशीद से बात की।
पिछले जब ये जून में पाकिस्तान को डेडलाइन दी गई थी अक्टूबर की, तो उसके बाद से कुछ सीरियसनेस तो नजर आ रही है और इसका एतराफ खुद FATF ने भी किया है कि पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है जो तब्दीलियां लानी है या जो खामियां इकोनॉमी में है दूर करने की, लेकिन काम बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि जो पॉलिटिकल और जो मिलिट्री लीडरशिप है वो मिलकर इसको हैंडल कर रहे हैं, तो उससे तो लगता है कि सीरियसनेस है।
जब से निगरानी शुरू हुई है या जब से इनको मौका दिया जाना शुरू हुआ है, पाकिस्तान सरकार ने क्या क्या किया है?
इसमें मेरे ख्याल में इंडिया का काफी प्रेशर था और वो चाह रहे थे कि जो कश्मीर में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं उसको बंद किया जाए। इतनी हमारी जानकारी है, पाकिस्तान ने उनके दफातर बंद किए हैं, जो उनको स्टेट से पैसे मिल रहे थे वो बंद हुए हैं, क्योंकि अब हर चीज की FATF रसीद मांग रहा है कि आपने जो पैसे कर रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, कौन दे रहा है, किसको दे रहा है, क्यों दे रहा है, कुछ छुपाना मुमकिन नहीं है। सबसे बड़ी कंसर्न यही है FATF की कि पाकिस्तान में इतने अरसे में पाकिस्तान को ये पिछले वर्ष से प्रेशर डालना FATF ने शुरू किया है, तो उस वक्त से कोई बड़ी ट्रांसैक्शंस नहीं पकड़ी हैं, कोई अरबों खरबों की जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी वो भी कोई केसेस नहीं आए हैं। कुछ पकड़े हैं इन्होंने और कुछ अदालतों में भी गए हैं, लेकिन कन्विक्शन रेट जो है वो बहुत कम है, बहुत कम लोगों को सजाएं हुई हैं। जमात उद दावा जो है, उसकी मिसाल लें तो लोग पकड़े भी हुए हैं, पाकिस्तान ने गिरफ्तार भी हैं, अदालतों में केसेस भी चल रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को सजा नहीं हुई है। पहला लिटमस टेस्ट उसका यही होगा पाकिस्तान का कि किन किन लोगों को फाइनेंशियल उसमें सजाएं होती हैं।
पाकिस्तान को कार्रवाई करने में चरमपंथी संगठनों और उसके सदस्यों पर कार्रवाई करने में क्या मुश्किलें हैं सबसे बड़ी?
एक तो जो आरोप है पाकिस्तान का कि वो खुद इन इन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट कर रहा था और फाइनेंशियली उनकी मदद कर रहा था, तो अब वो बंद करना कितना आसान या मुश्किल है ये तो स्टेट ही बता सकती है। जो अलकायदा और पाकिस्तानी तालिबान और अफगान तालिबान पाकिस्तान से अगर कोई ऑपरेट कर रहे हैं या उनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस यहाँ से हो रही हैं, तो उस पर नज़र रखना यकीनन एक बहुत मुश्किल काम है। लेकिन कुछ लोग यहाँ ये कहते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान कोऑपरेट कर रहा है तो शायद ब्लैक लिस्ट में कभी ना जाए, क्योंकि ब्लैक लिस्ट में सिर्फ ईरान और नॉर्थ कोरिया हैं, और वो इसलिए कि वो FATF के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे। तो देखना यही है कि इस सुस्त रवि पर FATF कोई इसके खिलाफ एक्शन लेता है या नहीं लेता, या उसको मजीद वक्त फरवरी में दिया जाएगा, क्योंकि ये चार माह में ये चीज़ें सारी होनी मुश्किल हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कम से कम पाकिस्तान को एक वर्ष चाहिए इन सब पर काबू पाने के लिए।
पाकिस्तान को FATF की चेतावनी, अधिक जानकारी दे रहे थे हारून रशीद।
बीबीसी इंडिया पोल।
सावरकर को बीजेपी ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में भारत रत्न दिलाने का वादा किया। सावरकर हीरो या विलन? भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के लिए सावरकर के नाम पर विवाद क्यों? यही है इस बार बीबीसी इंडिया बोल का विषय। आप भी रखें अपनी बात तर्कों के साथ। बीबीसी इंडिया बोल में शामिल होने के लिए शनिवार 19 अक्टूबर को शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
आज शाम को 7:30 बजे बीबीसी इंडिया बोल में भाग लेना ना भूलें। और श्रोताओं, अब रुख करते हैं आपके पसंदीदा विवेचना का। हाल ही में फ्रैंक डिकोटर की एक किताब प्रकाशित हुई है, हाउ टू बी अ डिक्टेटर, जिसमें उन्होंने 20वीं सदी के 8 तानाशाहों के जीवन पर नजर दौड़ाई है। उनमें से एक थे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोलाई चाचेस्कू। उन्होंने रोमानिया पर 25 सालों तक राज किया। 1989 में क्रांति के बाद उन्हें गोली मार दी गई। आज की विवेचना में रेहान फजल नजर दौड़ा रहे हैं चाचेस्कू के विवादास्पद शासनकाल पर।
तानाशाहों को अपने बारे में हमेशा गलतफहमी रहती है कि वो बहुत ताकतवर इंसान है, लेकिन होता इसका ठीक उल्टा है। दुनिया में उनसे ज्यादा कमजोर इंसान नहीं होता, क्योंकि उन्हें अपने ही लोगों से डर लगता है और उन्हें शासन चलाने के लिए सेना का सहारा लेना पड़ता है। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोलाई चाचेस्कू इन्हीं तानाशाहों में से एक थे, जिन्होंने पूरे 25 सालों तक न सिर्फ अपने देश की मीडिया की आवाज नहीं निकलने दी, बल्कि खाने पीने तेल और यहां तक कि दवाइयों पर राशन लगा दिया। नतीजा यह हुआ कि हजारों लोग बीमारी और भुखमरी के शिकार हो गए, और उस पर तुर्रा ये कि उनकी खुफिया पुलिस सिक्योरिटेट ने लगातार इस बात की निगरानी रखी कि आम लोग अपनी निजी जिंदगी में क्या कर रहे हैं। रोमानिया में भारत के पूर्व राजदूत राजीव डोगरा याद करते हैं,
जब मैं गया रोमानिया में तो मेरे को ये लगा कि लोग जो हैं अपनी छाया से भी घबराते थे। सड़क पे चलते थे तो हमेशा पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहते थे। पार्क में होते थे तो देखते थे बेंच पे कोई आदमी तो नहीं बैठा, क्योंकि चौचेस्कू के जमाने में अखबार में एक मोरी करके इंटेलिजेंस एजेंट बैठा होता था सबको ऊपर नजर रखने के लिए।
चाचेस्कू के शासन का पूरा दौर रोमानिया की जनता के लिए अभाव का दौर था। हर जगह चीजों को लेने के लिए लंबी कतारें लगती थी। दुकानों में फल नहीं के बराबर थे। सामान्य वाइन आम लोगों की पहुंच के बाहर थी। फ्रैंक डिकोटर अपनी किताब हाउ टू बी ए डिक्टेटर में लिखते हैं,
सबसे बड़ी समस्या ऊर्जा की थी। हर 3 में से 1 बल्ब ही जला करता था और सार्वजनिक वाहनों के रविवार को चलने पर मनाही थी। चाचेस्कू ने बड़ा औद्योगिक बेस बनाने के लिए पश्चिमी देशों से भारी मात्रा में तकनीक, कच्चा माल और यंत्र आयात किए थे, लेकिन तेल की कीमतें बढ़ जाने की वजह से उन्हें लिए गए कर्ज में बड़ी दर से ब्याज देना पड़ रहा था। अचानक उन्होंने सारे ऋण को तुरंत एक साथ चुकाने का फैसला लिया। नतीजा यह हुआ कि किफायती कार्यक्रम लागू किए गए, आयात कम कर दिए गए और निर्यात बढ़ा दिए गए। सोवियत संघ को मांस का निर्यात 2 सालों में तिगुना कर दिया गया। फल, सब्जियां और वाइन सभी को विदेशी बाजारों के लिए भेजा जाने लगा। खाने पर राशन लगा दिया गया। बिजली की खपत में भारी कटौती की गई और लोग कड़कड़ाती ठंड में, अंधेरे में, बिना किसी हीटिंग के कांपते हुए रहने के लिए मजबूर हो गए।
क्योंकि चाचेस्को छोटे कद के थे, वो हर चीज बड़ी पसंद करते थे। उन्होंने राजधानी बुखारेस्ट में अरबों डॉलर खर्च कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा भवन पीपल्स हाउस बनवाया था, जिसका हीटिंग और बिजली का खर्च आज के जमाने में लाखों डॉलर का आता है। और भवन बन जाने के 25 साल बाद भी इसके 70% कमरे अभी भी खाली हैं। चाचेस्कू की जीवनी द लाइफ एंड इविल टाइम्स ऑफ निकोलाई चाचेस्कू में जॉन स्वीनी लिखते हैं।
इस भवन के निर्माण में 15,000 मजदूर लगे हुए थे, लेकिन उनके लिए वहां एक भी टॉयलेट नहीं था। इसलिए जहां भी किसी मजदूर को मौका मिलता, वो अपने आप को हल्का कर लेता। पूरे भवन में बुरी तरह से बदबू भरी हुई थी। जब भी चाचेस्को के आने की खबर मिलती, मजदूरों का एक दल दौड़कर उस इलाके की गंदगी को साफ कर देता। एक दिन चाचेस्को साफ किए गए इलाके से थोड़ा भटक गए और ऐसी जगह मुड़ गए जहां अंधेरा था। अंधेरे में उनका पैर मल के ढेर पर पड़ा और उनके दोनों जूते उससे बुरी तरह सन गए। कुछ मजदूरों की हंसी निकल गई, लेकिन जब सिक्योरिटेट के लोगों ने घूर कर देखा तो वो लोग दूसरी तरफ देखने लगे। सिक्योरिटेट का एक बंदा चाचेस्को के जूतों पर लगी गंदगी को साफ करने लगा। चाचेस्को अपने गंदे पैरों के साथ कार की तरफ बढ़े। जहां जहां उनके कदम पड़े, उनके जूतों पर लगी गंदगी के निशान छूटते गए। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा, न ही कोई हंसा, मानो एटम बम फूट गया हो। कल्पना कीजिए कि चाचेस्को का क्या हाल हुआ होगा, जो चाचेस्को इन्फेक्शन से बचने के लिए एक दिन में 20-20 बार अल्कोहल से अपने हाथ धोया करते थे।
चाचेस्को के खिलाफ जन आंदोलन बढ़ने लगा। 17 दिसंबर 1989 को रोमानिया की सेना ने तिमिस्वारा के प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, लेकिन इस विरोध की शुरुआत 2 साल पहले हो गई थी।
सबसे पहला जो झटका लगा वो 87 में चाचेस्को ने सोचा, हंगरी और रोमानिया के बॉर्डर पे, रोमानियन साइड पे बहुत हंगेरियन पॉपुलेशन है मुद्दतों से, तो उन्होंने ये सोचा कि ये सबको मैं निकाल दूंगा और हंगरी भेज दूंगा वापस, क्योंकि ये हमारे हित में नहीं है, ये लोग हमारे देशद्रोही हैं। तो 87 में उन्होंने देश निकाला शुरू किया। जब वो बॉर्डर पे पहुंचे तो हंगेरियन फोर्सेस ने उनको शूट डाउन कर दिया, काफी सैकड़ों की तादाद में। तो एक तो वो हंगेरियन लोग जो थे, जो वापस आए, उनके मन में काफी रंज और रोष हुआ। इनफैक्ट जो पहला स्पार्क हुआ 17 दिसंबर की बात है, वो तिमिस्वारा जो बॉर्डर टाउन है वहां पे शुरू हुआ। और कहा यह जाता है कि सडनली लोग आए, बसों में आए, कोई कहता कि हंगरी से आए, बदला था वो निकालने के लिए चाचेस्को के। तो जब वो एक मास प्रोटेस्ट सा हो रहा था सेंटर ऑफ द टाउन में, तो वहां ये जो लोग आए थे, तो जब मजमा चल रहा था, प्रोटेस्ट शुरू हो रहा था, फायरिंग शुरू हो गई। क्राउड के बीच में फायरिंग हुई तो जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उन्होंने काउंटर फायर किया। सो 17 दिसंबर 1989 वॉज द फर्स्ट स्पार्क। पर उससे पहले लोग जैसे काम पे जाते थे, नीचे देखते हुए जाते थे, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं थी ऊपर सर उठा के देखें, तो देखते जाते थे तो पैम्फलेट मिलते थे, और पैम्फलेट मतलब जिस प्रिंटेड पोर्शन है वो ऊपर की तरफ, ताकि कोई मिस ना कर सके, उस पे ये लिखा होता था द टाइम हैज कम, अंत होने वाला है। तो कहा यह जाता है कि जिप्सीज, उनको सपुर्द किया गया था यह मामला कि रात को 3-4 बजे जाके आप ये कर दें, जब वो सोए हुए हों और उठने से पहले, मतलब इंटेलिजेंस एजेंट्स उठने से पहले, अपनी ड्यूटी पे आने से पहले ये पड़े हों, लोग अपना उठा के चुपचाप या तो देखें या झुक के ऐसे जैसे तस्मे बांध रहे हैं उस तरह पढ़ के अपने ऑफिस में चले जाएं।
21 दिसंबर 1989 को निकोलाई चाचेस्कू ने बुखारेस्ट के मध्य में पार्टी मुख्यालय की बालकनी से एक जनसभा को संबोधित किया। अभी उनको भाषण देते हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि पीछे की तरफ से सीटियों और तानों की आवाजें आने लगी। चाचेस्कू ने हाथ उठाकर और माइक को टैप कर लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन पीछे से आता शोर जारी रहा।
हेलो
अगले दिन सेना भी विद्रोह में शामिल हो गई। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पार्टी मुख्यालय को घेरना शुरू कर दिया। एलिना और चेचेस्कू को हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा, लेकिन यहां भी ड्रामा जारी रहा। चेचेस्कू लिफ्ट से भवन की छत पर गए, जहां एक हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा था। जॉन स्वीनी लिखते हैं,
जैसे ही चेचेस्कू लिफ्ट में घुसे, जनरल स्टैनकुलस्कू रक्षा मंत्रालय की ओर रवाना हो गए। अपनी कार से ही उन्होंने रेडियो पर सुरक्षा बलों को आदेश दिया कि वे भवन की रक्षा करना छोड़ दें। जैसे ही सैनिक वहां से हटे, क्रांतिकारी भवन में घुसना शुरू हो गए, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि चेचेस्कू अभी भी भवन के अंदर ही मौजूद हैं, क्योंकि उनकी लिफ्ट के दरवाजे जाम हो चुके थे। वो उस छत पर पहुंच चुके थे जहां एक हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन उनकी लिफ्ट का दरवाजा खुलकर ही नहीं दे रहा था। किसी तरह लिफ्ट के दरवाजे को तोड़कर चेचेस्कू को निकाला गया। जैसे ही क्रांतिकारी छत पर पहुंचे, 6 लोगों को लिए इकुरियु हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। हेलीकॉप्टर में इतनी कम जगह थी कि पायलट के साथी को बैठने के लिए चेचेस्कू के घुटनों का सहारा लेना पड़ा।
हेलीकॉप्टर के पायलट ने उसे राजधानी बुखारेस्ट के बाहर एक खेत में उतारा और वो चेचेस्कू दंपत्ति को उनके एक अंगरक्षक के साथ छोड़कर वापस उड़ गए। उसी दिन चेचेस्कू और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। क्रिसमस के दिन दोनों पर एक सैनिक अदालत में मुकदमा चलाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। उन्हें एक आंगन में ले जाकर एक टॉयलेट की दीवार के सहारे खड़ा कर फायरिंग स्क्वाड ने निशाना लिया और 25 सालों तक रोमानिया पर राज करने वाले इस निरंकुश तानाशाह निकोलाई चेचेस्कू ने अपनी अंतिम सांस ली। मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स ने एक बार कहा था, लोग अपना इतिहास खुद बनाते हैं, लेकिन इतिहास कभी उनकी पसंद से नहीं बनता। रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
रेहान फजल की यह विवेचना आपको कैसी लगी, हमें जरूर लिखें।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल। और अब जान लेते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबार आज क्या कुछ कह रहे हैं। अखबारों के साथ स्टूडियो में गुरप्रीत सैनी है। जी गुरप्रीत, बताएं।
जी शाहिद, कल ही खबर आई थी कि मेक्सिको ने यूएस में गैर कानूनी तरीके से घुसने की कोशिश कर रहे 311 भारतीयों को डिपोर्ट कर दिया है। ये लोग अब भारत पहुंच चुके हैं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने इन लोगों से बात करके विस्तार में इनकी आप बीती छापी है, जिसमें इन्होंने बताया कि कैसे वो मानव तस्करों, बीमारी और प्यास से लड़ते हुए पनामा जंगलों के मुश्किल रास्ते से होते हुए मैक्सिको पहुंचे थे। उनके मुताबिक मैक्सिको तक के सफर में उन्हें महीनों लग गए थे, लेकिन शुक्रवार को मैक्सिको सरकार ने इन लोगों को वापस भारत भेज दिया। इन लोगों में पंजाब और हरियाणा के 300 से ज्यादा युवा प्रवासी शामिल हैं। इन लोगों ने पहले वीजा एजेंट से संपर्क किया था, जिन्होंने कहा था कि 15 से 20 लाख रुपये एक व्यक्ति के लगेंगे, लेकिन किसान परिवारों के जो ये लड़के हैं, बेरोजगार लड़के हैं, इन्होंने दूसरा रास्ता निकाला अमेरिका पहुंचने का। इन लोगों ने यूट्यूब पर वीडियो देखे और ऐसे लोगों के बारे में सुना जो सफलतापूर्वक अमेरिका पहुंच गए थे जहां उन्हें जाना था। 26 साल के सेवक सिंह है, उन्होंने बताया कि यूट्यूब पर उन्होंने यात्रा का वीडियो देखा, उसे देखकर नहीं लगा कि ये सफर इतना भयानक होगा। उन्हें लगा कि उन्होंने कहा मुझे नहीं पता था कि ऐसे जंगल से होके जाना पड़ेगा, जहां ना खाना मिलेगा ना पानी। उन्होंने बताया है कि प्यास बुझाने के लिए उन्होंने अपने कमीजों से पसीना निचोड़ कर तक पिया।
इसके अलावा जी बढ़ते हैं आगे,
द हिंदू अखबार उठाती हूं मैं, जिसमें हेडलाइन दिख रही कि मुस्लिमों ने अयोध्या पर दावा नहीं छोड़ा है, ये सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा है। उन्होंने उन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज किया है जिसमें कहा गया है कि मध्यस्थता वार्ता में सहमति बन गई है।
जी, अब तक ऐसी अफवाहें आ रही थी कि कुछ सहमति बनती दिख रही है, ये भी कहानी आ रही थी कि सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है वो वापस लेने वाला है, लेकिन इस पे अभी कुछ हुआ नहीं है।
जी, राजस्थान सरकार ने पहलू खान लिंचिंग मामले में एक अपील दायर की है हाईकोर्ट में, जिसमें उन्होंने चैलेंज किया है अलवर सेशन कोर्ट के उस फैसले को जिसमें 6 अभियुक्तों को बरी कर दिया गया था।
जी, इसके अलावा मेरे आगे जनसत्ता रखा है गुरप्रीत, और इसमें एक खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिए हैं, जो सुरक्षा बल हैं, केंद्रीय सुरक्षा बल, उनको निर्देश दिए हैं कि वो अपने दफ्तरों में सरदार पटेल की तस्वीर लगाएं।
अगले जी एक और इस खबर है सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई जो कई अखबारों में दिख रही है कि अगले प्रधान न्यायाधीश हो सकते हैं एसए बोबड़े।
जी जनसत्ता मेरे सामने रखा है उसका शीर्षक है अगले प्रधान न्यायाधीश हो सकते हैं एसए बोबड़े जो आपने कहा, और इसकी सिफारिश जो है अभी जो मुख्य न्यायाधीश हैं जो गोगोई उन्होंने ही सिफारिश की है क्योंकि मुख्य न्यायाधीश सिफारिश करता है। उसी के अलावा एक खबर दिख रही है कि दिल्ली की आबोहवा हुई और ख़राब, जिस तरीके से पराली पंजाब और हरियाणा में जलाई जाती है उसकी अब उसको एक वजह बताया जाता है, वही एक वजह यहाँ भी दिखती है। अखबारों की समीक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरप्रीत। बढ़ते हैं आगे, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही टेस्ट श्रृंखला का अंतिम मैच आज रांची में खेला जाएगा। भारत 2-0 से दक्षिण अफ्रीका पर विजय बढ़त बनाए हुए है, लेकिन रांची में दोनों क्रिकेट टीमों को अलग अलग होटलों में ठहराने को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम को 5 सितारा होटल में ठहराया गया है, वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम कुछ छोटे होटल में ठहराई गई है। रांची से रवि प्रकाश की रिपोर्ट सुनिए।
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज से प्रारंभ होने वाला टेस्ट मैच कुछ दूसरे कारणों को लेकर चर्चा में है। ताजा चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी 5 सितारा होटल रेडसन ब्लू में ठहराए गए हैं, वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम अपेक्षाकृत छोटे होटल लीलैक सरोवर पोर्टिको में रुकी है। इससे पहले यहां आने वाली टीमें शहर के इकलौते 5 स्टार होटल रेडसन ब्लू में एक साथ रुकती थीं। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट अजय नाथ सहदेव ने इस बाबत कहा कि इस बार दोनों टीमों के लिए एक ही जगह कमरे नहीं मिल सके।
बुकिंग कराया था और रांची में एक साल पहले से डॉक्टर लोग का यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रहा था, डॉक्टर का यहाँ के सारे जो होटल है बुक्ड है। तो इसके बाद जब मैचेस यहाँ पे जब हुआ तो यहाँ जब इन लोगों ने कराया तो यहाँ मैच के लिए राजस्थान में ही रूम बुक होता है हमेशा, बट इस बार इन लोगों के पास रूम अवेलेबल नहीं था।
होटल रेडिसन ब्लू के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देवेश कुमार ने बीबीसी से कहा कि बीसीसीआई ने पहले दोनों क्रिकेट टीमों के लिए मेरे ही होटल की बुकिंग कराई थी। इस बीच टेस्ट मैच की तारीखों में बदलाव हुआ, अब जिन तारीखों पर बीसीसीआई को कमरे चाहिए थे वो उपलब्ध करा पाना हमारे लिए मुश्किल था क्योंकि डॉक्टरों के सम्मेलन के लिए यहाँ कई कमरों की बुकिंग बहुत पहले कराई जा चुकी थी।
सिचुएशन ये है कि रांची में यूरोलॉजी कॉन्फ्रेंस हो रहा है, 1.5 साल पहले ही बुकिंग हुई है और जिस वजह से नॉट ओनली आर होटल, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द होटल्स इन रांची आर कंप्लीटली सोल्ड आउट।
इधर होटल लीलैक सरोवर पोर्टिको पहुंची दक्षिण अफ्रीका की टीम की अत्याधुनिक बस होटल के मुख्य गेट की चौड़ाई कम होने के कारण फंस गई। इसके बाद क्रिकेटरों को बस से उतरकर पैदल ही जाना पड़ा। होटल में स्विमिंग पूल नहीं होने के कारण अफ्रीकी क्रिकेटरों ने JSCS स्टेडियम के पूल में तैराकी की। हालांकि दक्षिण अफ्रीका टीम ने इसकी औपचारिक शिकायत नहीं की है। होटल लीलैक सरोवर पोर्टिको के जनरल मैनेजर राहुल कुमार ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि क्रिकेट टीम ने हमारी मेजबानी की प्रशंसा की है।
अगर मैं बात बस से स्टार्ट करूं सर, वो बस आजकल होटल के अंदर ही खड़ी है, इनफैक्ट अभी भी होटल के अंदर ही खड़ी है और बड़े अच्छे से इन आउट कर रही है। फर्स्ट डे था सर, ड्राइवर थोड़ा मिसजज कर गया, थोड़ा सा प्रेशर में आ गया जिसकी वजह से उसको बार बार इन आउट टर्न लेने में मुश्किल हो रही थी और फिर लगा कि इतना टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, तो इसलिए प्लेयर स्टेप डाउन करके होटल आ गए। मामूली डिस्टेंस है सर।
तो ये क्या स्विमिंग पूल को लेके जो बात है, क्या स्विमिंग पूल नहीं है सच में क्या होटल में?
होटल में स्विमिंग पूल नहीं है सर, बट इसकी वजह से खिलाड़ियों को कोई परेशानी नहीं हो रहा है।
बहरहाल यह मामला खेल प्रेमियों के बीच चर्चा में है। रांची कैप्टन कुल महेंद्र सिंह धोनी का शहर है, वे अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते, लिहाजा धोनी इस मैच में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं है। इस मैच के लिए टिकटों की भी काफी कम बिक्री हुई है, कुछ लोग इसे धोनी की गैर हाजिरी से जोड़कर देख रहे हैं। रवि प्रकाश, BBC रांची।
और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर गुरप्रीत सैनी से।
BBC समाचार। स्पेन के बार्सिलोना शहर में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। प्रदर्शनकारी कैटालोनिया के 9 अलगाववादी नेताओं की रिहाई की मांग कर रहे हैं। न्यूयॉर्क की एक अदालत ने होंडुरस के राष्ट्रपति के भाई को ड्रग्स की तस्करी का दोषी पाया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सांसदों से अपील की है कि वो नए ब्रेग्जिट समझौते के पक्ष में मतदान करें। समझौते पर आज संसद में वोटिंग होनी है। मैक्सिको के राष्ट्रपति ने एक बड़े ड्रग्स डीलर के बेटे को रिहा करने के अपने फैसले का बचाव किया है। राष्ट्रपति ओब्राडोर का कहना है कि उनके इस फैसले से कई जानें बच गई हैं। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य मिच मैकोलन ने सीरिया में सेना को वापस बुलाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले की आलोचना की है। BBC समाचार।
नमस्कार। भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला अजीत सारथी ने। आपसे अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे BBC इंडिया बोल में होगी। जरूर इसमें भाग लें। तब तक ताजा खबरों के लिए आपके साथ है BBCHindi.com का पन्ना। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दें अनुमति। नमस्कार।